आशिका ने जितना सब कुछ सोचा था वो इतना भी आसान नहीं होने वाला था, खासकर स्काई के चलते। स्काई ने उसके घर का पता लगा लिया था और अब वो वहां पर आधमका था। वो यही चाहता था कि आशिका अपना ये छोटा सा कमरा छोड़कर उसके घर रहने आ जाए। फिलहाल तो आशिका ने उसे अपने पति के पास जाकर तलाक लेने जाने की बात कहकर बहाना बनाकर टाल दिया था, लेकिन वो शांत नहीं बैठने वाला था। खुद को इस जाल से निकालने के लिए आशिका ने इंडिया से मिला अनएथिकल हैकिंग का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया था, जो किसी और ने नहीं बल्कि रचित ने ही भेजा था। आशिका के प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहने के बाद रेहान ने रचित को कन्फर्मेशन मेल भेजा और फिर आशिका के पास आकर बोला, कहना पड़ेगा तुम्हारी माँ एक बहुत ही बुरी इंसान है, वो तुम्हें इतने खतरनाक लोगों के बीच में छोड़ भी कैसे सकती है। ऐश, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम वापस कभी मत आना, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपना कैरियर बना सकती हो। अगर वो मोटा लड़का अभिमान राजवंश दिल का अच्छा इंसान हुआ तो तुम उसके साथ रह लेना, पैसे मायने नहीं रखते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं और तुम और भी कमा सकती हो, रेहान ने आशिका को समझाया। आशिका ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और कहा, तुम अपने जज्बातों में कुछ ज्यादा ही बह गए हो रेहान, मैं प्रोजेक्ट के चलते जा रही हूँ, ना कि अपने पति को ढूंढने। मुझे तो पता भी नहीं कि वो रहता कहाँ होगा। हाँ, इस प्रोजेक्ट के चलते अगर मुझे कोई सेफ जगह मिली तो मैं खुद को वहां छुपा लूंगी। डोंट वरी, मैं तुम्हें भी जल्द ही अपने पास बुला लूंगी। इतने सालों से आशिका और रेहान एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। सिर्फ उनका प्रोफेशन ही एक जैसा नहीं था, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी लगभग एक जैसी थी। जहां रेहान के डैड ने दूसरी शादी कर ली तो उसकी मॉम भी उसके साथ कुछ खास अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। रेहान इमोशनल होकर आशिका को हग किया और कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा ऐश, डोंट वरी, यहाँ के सारे प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इंडिया में तो हैकिंग टोटली अनएथिकल है, हमें कोई और काम ढूंढना होगा।
हाँ, जैसे लोगों को बता ही नहीं है कि ब्लैक वर्ल्ड के ऐश और रे कौन है, चिंता मत करो, हमारी ये छुपी हुई पहचान हमारे बहुत काम आएगी। और मैं इंडिया में आशिका सिंघानिया बनकर नहीं बल्कि ऐश बनकर जा रही हूँ, आशिका ने मुस्कुराकर कहा और फिर उससे अलग हो गई। वो अपनी अलमारी की तरफ जाते हुए बोली, चलो मुझे पैकिंग करने दो, इंडिया के लिए निकलना है, तुम ऐसा करो मेरे लिए टिकट्स बुक कर दो। बोलते हुए आशिका की नज़र रेहान के चेहरे की तरफ गई, जिस पर शरारती मुस्कुराहट थी। आशिका ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं, तुम एयरलाइन की वेबसाइट को हैक नहीं कर सकते हो, मैं लीगली इंडिया जाना चाहती हूँ, तुम क्या चाहते हो, जाने से पहले ही मैं अरेस्ट हो जाऊँ? आज तक पकड़े गए हैं क्या, जॉब पकड़े जाएंगे? रेहान ने भौहें उठाकर कहा। इतने पैसे हैं हमारे पास, लेकिन तुम कंजूसी करने से बाज नहीं आओगे, आशिका ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। हाँ, बोल भी कौन रहा है जो इसे एक छोटे से कमरे में रहती है, कुछ चीज़ें कंजूसी के चलते नहीं बल्कि मज़े के चलते की जाती हैं, करने दो ना प्लीज़, रेहान ने प्लीडिंग वॉइस में कहा, लेकिन आशिका ने साफ मना कर दिया था। मजबूरन रेहान को उसके लिए टिकट बुक करवानी ही पड़ी। टिकट बुक करवाने के बाद वो आशिका के लिए कुछ ज़रूरी शॉपिंग करने के लिए निकल गया था, तो वहीं आशिका की पैकिंग भी अब पूरी हो चुकी थी। एक लंबे दिन के बाद आशिका काफ़ी थक चुकी थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन आशिका को सिंपल लाइफ बिताने की आदत हो चुकी थी। उसने अपने लिए नॉर्मल सा डिनर ऑर्डर किया और आराम से बैठकर खा रही थी, तभी उसके कमरे में किसी ने दस्तक दी। आशिका ने नज़रें उठाकर देखा तो उसके सामने उसकी माँ तृप्ति और सौतेली बहन सेलिना खड़ी थी। सेलिना तृप्ति के पति की बेटी थी, जो आशिका की उम्र की ही थी। उसकी मॉम इंडियन होने की वजह से उसकी फेशियल फीचर्स काफ़ी हद तक इंडियन थे। आशिका को सामान के साथ देखकर सेलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ जाने की तैयारी चल रही है, कहीं हमें मुसीबत में डालकर भाग तो नहीं रही हो तुम? आशिका ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने सेलिना की बात सुनकर भी ना सुनी हो, बस वो चुपचाप अपने खाने में व्यस्त थी। ये देखकर सेलिना और तृप्ति दोनों को ही गुस्सा आने लगा। तृप्ति ने आशिका के हाथ से प्लेट छीनी और उसे उंगली दिखाते हुए कहा, देख अपना घमंड किसी और के सामने दिखाना, तो कोई रईस खानदान की लाडली बेटी नहीं है जो हमें तेवर दिखा रही है, कहाँ जा रही है सीधे सीधे बता। मेरा कुछ बताने का मूड नहीं है, मुझे पसंद नहीं है जब कोई मुझे खाना खाते टाइम डिस्टर्ब करे, आशिका ने काफ़ी बेरुखी से जवाब दिया। तृप्ति से ये कहाँ बर्दाश्त होने वाला था, वो आशिका के पास गई और उसके हाथ से उसकी प्लेट छीन ली थी। तृप्ति ने आशिका की गर्दन से उसके बालों को पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, कुछ साल बाहर क्या रही, भूल गई है क्या कि माँ को कैसे जवाब देना है? कोई बात नहीं, तुझे अच्छी आदतें सिखाना मुझे अच्छे से आता है। मेरी कोई माँ नहीं है और ना ही हमारे बीच कोई रिश्ता है। जब आपने मुझे घर से निकाला था तब यही कहा था कि मैं आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद ना रखूँ, कभी मिलने भी ना आऊँ। मैं अपने वादे पर आज तक टिकी हुई हूँ, लेकिन लगता है हमेशा की तरह थूक कर चाटने की आपकी आदत हो गई है, आशिका ने शांति से जवाब दिया और तृप्ति को खुद से दूर धकेल दिया था। आशिका वहां से उठकर हाथ धोने के लिए जाने लगी, तभी तृप्ति ने पीछे से तेज आवाज में कहा, देख आशिका, ज्यादा हवा में मत उड़, मिस्टर स्काई की शादी तो मैं सेलिना से भी करवा सकती हूँ, उसका सहारा मिल गया तो तू मुझे भला बुरा सुनाने लगी। हालांकि आशिका की स्काई से ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही उसे पूरे मामले के बारे में पता था, लेकिन एक बात साफ थी कि तृप्ति को स्काई से बहुत डर लगता था। आशिका ने गहरी सांस ली और तृप्ति की तरफ पलटकर कहा, ये बड़ी बड़ी बातें आप किसी यार के सामने जाकर कीजिए जो आपके असली चेहरे से वाकिफ ना हो। आप अपनी इस लाडली बेटी की शादी कभी उस बूढ़े आदमी से नहीं करवाएंगी, तभी आपने मुझे इन सब में फंसा दिया। मैं तो निकल जाऊंगी, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा? आशिका, तृप्ति गुस्से में जोर से चिल्लाई। सेलिना जल्दी से उसके पास आई और उसका हाथ सहलाकर कान के पास आकर दबी आवाज में कहा, मॉम, क्यों बेवजह इस लड़की को भड़का रही हैं? यह हमारे बहुत काम आ सकती है। एक बार इसकी शादी मिस्टर स्काई से हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग डॉलर्स में खेलेंगे। सेलिना के कहने पर तृप्ति ने अपने गुस्से को काबू किया। उसने आशिका की तरफ देखकर नर्म लहजे में कहा, देखो आशिका, मैं जानती हूँ कि पहले मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम मेरा सहारा नहीं बनोगी तो और कौन बनेगा? सेलिना मेरी खुद की बेटी नहीं है। अगर होती तो मैं उसकी शादी जरूर मिस्टर स्काई से करवा देती। मेरी उम्मीदें तो अपनी बेटी से ही होंगी ना। तृप्ति की ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर आशिका के चेहरे पर सार्केस्टिक स्माइल उभर आई थी। वो तृप्ति से ज्यादा देर बहस करके अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती थी। कुछ ही देर में रेहान भी लौटने वाला था। अगर तृप्ति को पता चल जाता कि वो इंडिया जा रही है या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता होता तो वो उसके पीछे किसी न किसी को जरूर भेज देती। देखिए, मुझे करने को बहुत सारे काम हैं। फिलहाल मुझे अपने पति के पास ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसे तलाक के लिए मनाना होगा। अगर आप चाहती हैं कि मेरा दिमाग खराब ना हो तो यहाँ से चली जाइए, आशिका ने उसे घूरते हुए कहा। उसने जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया था। अगर तृप्ति को जरा भी भनक हो जाती कि आशिका इंडिया जा रही है तो वो जमीन आसमान एक कर देती आशिका को इंडिया जाने से रोकने के लिए। तलाक और पति का नाम सुनकर सेलिना और तृप्ति भी खुश हो गईं। तृप्ति ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं और तुझे किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। वो आदमी तलाक के लिए नहीं माने तो हम मिस्टर स्काई के आदमियों को भेज देंगे।
फिलहाल तो आप मेरी यही मदद कर सकते हैं कि यहाँ से चली जाइए, आशिका ने कंधे उचकाकर कहा और फिर उन्हें दरवाजे की तरफ जाने का इशारा कर दिया था। सेलिना ने इशारे से तृप्ति को वहां से चलने को कहा। बाहर निकलते ही तृप्ति ने सेलिना से कहा, वो लड़की दिखने में जितनी मासूम लगती है उतनी ही तेज है, इसकी बातों में मत आओ, हमें इसके पीछे आदमियों को छोड़ देना चाहिए। हाँ, जो भी है, लेकिन इसके सामने बताना जरूरी नहीं है ना मॉम। फिलहाल हमारे लिए ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है और हम इसे एक साथ नहीं काट सकते हैं। ऊपर से मिस्टर स्काई को ये पसंद आ गई, रही बात इसकी अकले ठिकाने की तो वो हम मिस्टर स्काई पर छोड़ देते हैं, सेलिना ने जवाब दिया। तृप्ति ने उसकी बात पर हामी भरी और बाहर मौजूद आदमियों को आशिका पर कड़ी निगरानी रखने का बोलकर वहां से चली गई थी। आशिका अंदर की खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही थी। उनके जाते ही उसने राहत की सांस ली। इस बीच रेहान भी अंदर आ गया था। उसने आशिका से कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे भी ये जगह खाली करनी होगी और तुम भी खिड़की से जाना। उन्हें जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम कहाँ के लिए और कब निकली हो। वैसे भी फ्लाइट आधी रात को है तो किसी को शक नहीं होगा। थैंक यू सो मच, आशिका ने मुस्कुराकर कहा। एक इकलौता रेहान ही था जो उसकी मदद भी करता था और उसके साथ हर मुसीबत में खड़ा भी रहता था। एनीथिंग फॉर यू ऐश, रेहान ने मुस्कुराकर कहा और फिर आशिका को एक आईडी कार्ड दिया। थैंक गॉड ये भी मिल गया, वरना मुझे लगा कि रियल आइडेंटिटी के साथ ही जाना पड़ेगा, आशिका ने उसे देखते हुए कहा। वो उसकी नई आईडी थी जो एलए के हिसाब से बनी थी और उसमें उसका नाम ऐश रजिस्टर था। एक तरफ जहां आशिका ने जाने की पूरी तैयारी कर ली थी तो वहीं दूसरी तरफ रचित भी उसके कन्फर्मेशन मेल के बाद बहुत खुश था। वो बात करने के लिए अभिमान के पास गया भी था लेकिन वो मीटिंग में बिजी हो गया था। रात के वक्त जब अभिमान राघव के साथ घर के लिए निकल रहा था तब रचित जल्दी से उसका आगे आ गया। गेस व्हाट, मेरे पास क्या न्यूज़ है, रचित ने खुश होकर कहा। जो भी खबर है वो फिलहाल के लिए भले ही गुड न्यूज़ हो लेकिन फ्यूचर में मुझे उसका भुगतान करना पड़ेगा, अभिमान ने काफ़ी रूडली जवाब दिया। अरे सुन तो सही, पहले ही मुंह बनाकर खड़ा है, मैंने हमारे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था, बाकी सब तो पहले से ही फिक्स था, बस एक हैकर की ज़रूरत थी, रचित बोला। इसके बाद ख़त्म करते ही अभिमान के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। रचित ने हाथ जोड़ते हुए मुँह बनाया। अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा, ओ रियली, तुम्हें हैकर को ढूंढने की क्या ज़रूरत है, उसी इंसान को पकड़ कर ले आओ ना जिसके ज़रिए तुमने सालों पहले मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। अच्छा ठीक है ना यार, मुझे क्या पता था मामला इतना बढ़ जाएगा, और वो बंदा उस दिन के बाद से अंडरग्राउंड हो गया। जब से उसे पता चला कि तुम उसे ढूंढ रहे हो वो तो इस दुनिया से जैसे गायब हो गया हो। उसे छोड़ो, मैंने उससे भी बेस्ट ढूंढा है। यू वोंट बिलीव कि डार्क वेब के वर्ल्ड का नंबर वन हैकर ऐश हमारे लिए काम करने वाला है और वो कर इंडिया आ जाएगा, रचित ने बताया। उन सबको यही लगता था कि ऐश कोई लड़का है। इस बार रचित की खबर सुनकर सच में अभिमान के चेहरे पर सुकून के भाव थे। चलो, तुमने इतने सालों में पहली बार कोई गुड न्यूज़ दी है, अब वो दिन दूर नहीं जब मैं राजवंश फैमिली को सबक सिखा पाऊंगा। लेकिन हाँ, साथ ही मुझे उस आशिका सिंघानिया से भी पीछा छुड़ाना है, इससे पहले कि वे लोग उस लड़की को मेरे खिलाफ यूज़ करें, अभिमान बोला और फिर वहां से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। जहां एक तरफ आशिका अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अभिमान को तलाक नहीं देना चाहती थी तो वहीं अभिमान अपनी ज़िंदगी की मुसीबत को ख़त्म करने के लिए आशिका को डिवोर्स देना चाहता था। अभिमन्यु और इशिका आज पूरे दिन साथ में थे और उनका वक्त भी अच्छा बीता था। अभिमन्यु ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था तो इशिका की फरमाइश पर वो उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जा रहा था। वो दोनों कैबिन से बाहर निकले ही थे कि उनके सामने दिग्विजय राजवंश खड़े थे। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। क्या हुआ छोटे दादू,
आप इस तरह, ऑफिस कैसे, सब ठीक है ना? अभिमन्यु ने तुरंत उनके पास आकर पूछा। मेरी मदद करो अभिमन्यु, सिर्फ तुम ही कर सकते हो, दिग्विजय ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। अभिमन्यु और ऋषिका उन्हें अंदर लेकर आए। एक बार फिर आज विक्रम का कॉल आया था। ऐसे में वसुधा के कहने पर दिग्विजय अभिमन्यु से हेल्प मांगने आए थे।